यूनियन लीडर की बात हवा में तैर ही रही थी, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन इस बार भीड़ पहले जैसी एकजुट नहीं लगी। विश्वनाथ ने कुछ सेकंड तक बस सबको देखा, हर चेहरे को, हर हिचक को, हर डर को। फिर उसने बहुत धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला, एक कॉल किया। मिश्रा जी, उसकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी। एचआर और अकाउंट्स टीम को तुरंत फ्लोर पर भेजिए। भीड़ में हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। यूनियन लीडर ने भौहें से कोड़ दी। अब क्या नया ड्रामा है? विश्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में दो तीन लोग फाइल्स और लैपटॉप लेकर वहां आ गए। अब सबकी नज़रें विश्वनाथ पर थीं। उसने गहरी सांस ली और साफ ठहराव भरी आवाज में बोला, आप सबको लगता है कि कंपनी आपकी कद्र नहीं करती? कुछ लोग चुपचाप सुनने लगे। ठीक है, उसने सिर हिलाया, आज मैं आपको दिखाता हूँ कद्र क्या होती है। भीड़ पूरी तरह शांत। आर्यन, अदिति और शामली तीनों भी ध्यान से देख रहे थे। अकाउंट्स, विश्वनाथ ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, लिस्ट निकालिए सभी वर्कर्स की। आज, वो आगे बोला, हर कर्मचारी को एक महीने की सैलरी एडवांस दी जाएगी। भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गई और उसने रुककर कहा, डबल अमाउंट? अब सन्नाटा नहीं, हैरानी थी। क्या डबल? सच में? फुसफुसाहट तेज हो गई। यूनियन लीडर भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये रिश्वत है, वो जोर से बोला, हमें खरीदने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ भीड़ पर वैसा असर नहीं डाल पाई। एक वर्कर आगे आया, साहब सच में डबल मिलेगा? विश्वनाथ ने सीधे उसकी आंखों में देखा, कागज पर नहीं, आपके खाते में। दूसरा बोला, आज ही? आज ही प्रोसेस होगा, विश्वनाथ ने जवाब दिया, कल तक सबके अकाउंट में। अब भीड़ बदल चुकी थी। गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। लोग एक दूसरे को देखने लगे, गणित लगाने लगे, घर की जरूरतें, कर्ज, बच्चों की फीस। एक आदमी बोला, साहब अगर ऐसा है तो काम क्यों रोकें? दूसरे ने हामी भरी, हाँ हमें काम करना है। तीसरा, हम तो शुरू करेंगे। और बस यही वो दरार थी जिसका इंतजार विश्वनाथ कर रहा था। यूनियन लीडर ने गुस्से में कहा, कोई काम नहीं करेगा, मैंने कहा ना। लेकिन इस बार उसकी बात बीच में ही कट गई। हरी भैया, एक वर्कर ने आगे बढ़कर कहा, गलती हमारी भी थी। दूसरा बोला, हमें भड़काया गया। तीसरा, सच कहें तो बात इतनी बड़ी नहीं थी। अब भीड़ उसके खिलाफ खड़ी होने लगी थी। आपने ही कहा था कि कंपनी हमें दबा रही है, लेकिन साहब तो हमारे लिए खड़े हैं, डबल सैलरी कौन देता है भाई? हरी यानी यूनियन लीडर अब अकेला पड़ने लगा था। तुम लोग, उसने गुस्से में कहा, इतनी जल्दी पलट गए? पलटे नहीं, एक बुजुर्ग वल्कर बोला, समझ गए हैं। फिर वो सीधे विश्वनाथ की तरफ मुड़ा, साहब काम शुरू करेंगे। और जैसे उस एक वाक्य ने फैसला कर दिया, हाँ काम करेंगे, अभी से मशीनें चालू करो। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। अब नारे नहीं थे, अब हर कोई अपनी जगह की तरफ जा रहा था। मशीनों की आवाज़ धीरे धीरे फिर से लौटने लगी और बीच में यूनियन लीडर खड़ा था, अकेला, हार के साथ। विश्वनाथ उसकी तरफ बढ़ा, रुका, हल्का सा झुका और बहुत धीरे से बोला, लीडर बनने से पहले लोगों को समझना सीखो। फिर उसके होठों पर वही तिरछी मुस्कान आई, एक डेविल स्माइल। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। केबिन के अंदर दरवाज़ा बंद होते ही बाहर का शोर जैसे कट गया। विश्वनाथ खिड़की के पास खड़ा था, पीठ उनकी तरफ। आर्यन और अदिति अब भी उस पूरे सीन के असर में थे। अचानक अदिति ने जोर से कहा, वाओ पापा। वो दौड़कर उनके पास आई और उन्हें गले लगा लिया। आर्यन भी मुस्कुराया, सीरियसली हीरो हो आप? दोनों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड बस वही पल था, फिर विश्वनाथ ने धीरे से खुद को छुड़ाया। वो मुड़ा, उनकी तरफ देखा और होंठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आई। मेरे बच्चों के लिए, उसने धीरे से कहा, हीरो तो क्या, एक पल रुका, मैं विलन भी बन सकता हूँ। उसकी आंखों में कुछ था जो सिर्फ शब्द नहीं थे। आर्यन और अदिति एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। हमें पता है, आर्यन ने कहा, और इसीलिए, अदिति बोली, हम आपके साथ हैं। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ और अब कमरे में सिर्फ दो लोग बचे थे, विश्वनाथ और शामली। शामली वहीं खड़ी थी चुप। उसकी नज़रें अब भी विश्वनाथ पर थीं, लेकिन इस बार उनमें सवाल थे, थोड़ी हैरानी, थोड़ा असर और थोड़ा सा डर भी। आपने, उसने धीरे से कहा, सबको खरीद लिया? सीधा वाक्य। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा गंभीर नज़रों से। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, मैंने उन्हें याद दिलाया कि उनका फ़ायदा किस में है। शामली ने कुछ नहीं कहा, वो बस देखती रही जैसे पहली बार उसे समझ रही हो। हर लड़ाई, विश्वनाथ आगे बोला, शोर से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ खामोशी और सही चाल से जीती जाती हैं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। शामली की नज़रें अब भी उसी पर टिकी थीं, जहाँ एक तरफ ताकत थी और दूसरी तरफ उसे समझने की शुरुआत। हवेली के अंदर का माहौल हमेशा की तरह ठहरा हुआ था। ऊंची छतें, भारी पर्दे और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें। कमरे के बीचों बीच सुषमा देवी बिस्तर पर बैठी खाना खा रही थी। थाली में सादा खाना था, लेकिन उनके खाने के तरीके में वही रुतबा, वही ठहराव था। तभी दरवाजा बिना ज्यादा आहट के खुला। नंदिनी अंदर आई, चेहरे पर हल्की सी बेचैनी और आंखों में कुछ अलग ही इरादा। और कब तक सासू माँ? उसने हल्के तंज के साथ कहा। खाती ही रहोगी क्या? सुषमा देवी ने कौर तोड़ा, लेकिन मुंह तक ले जाने से पहले ही रुक गई। धीरे से नजर उठाई, सीधे नंदिनी की तरफ। कुछ काम है? नंदिनी ने आगे कहा। मेरे कमरे में चलो। आवाज सीधी थी, लेकिन उसमें आदेश छुपा था। सुषमा देवी ने बिना कुछ कहे कौर मुंह में डाला, धीरे धीरे चबाया, जैसे जल्दी उन्हें बिल्कुल नहीं थी। काम है? उन्होंने निगाहें टिकाए पूछा। या कोई नई चाल? नंदिनी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आप चलिए तो सही, पता चल जाएगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी फैल गई। फिर सुषमा देवी ने थाली एक तरफ सरकाई, आंचल से हाथ पोछे और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उनकी चाल में उम्र का असर था, लेकिन रुतबा अब भी कायम था। वो नंदिनी के पास आकर रुकी, एक पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चलो, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, देखते हैं इस बार क्या काम है। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई और मुड़कर आगे बढ़ गई। पीछे सुषमा देवी भी उसके साथ चल पड़ी। हवेली के लंबे गलियारे में दोनों के कदमों की आवाज गूंजने लगी और हवा में एक नया टकराव आकार लेने लगा।